नमस्कार भारत, 3 मई दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ओडिशा के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान फोनी। तेज बारिश, तटीय इलाके से निकाले गए लाखों लोग, बचाव टीमें तैनात।
जो वर्तमान सूचना अनुसार
बॉब लिन सिंह के अभियुक्तों के अभिनंदन को लेकर विवादों में रहे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बीबीसी से कहा,
विपक्ष के अगर आप देखें बड़े से बड़े नेता आज के समय अक्यूज्ड और बेल पे, उनको माला नहीं पहनाई जाती, पूरा देश उनको माला पहना रहा है।
और अमरीकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, न्याय विभाग की आरोपों पर आपत्ति।
This an offensive statement. I think she should apologize to the Attorney General or be specific as to.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान फोनी अब से कुछ घंटों बाद ओडिशा के पूरी तट से टकराएगा। तूफान के असर से बारिश शुरू हो गई है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के असर को देखते हुए मध्य रात से उड़ानों पर रोक लगा दी गई और 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने देश के अटॉर्नी जनरल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने मुलर रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस से झूठ बोला, जो कि अपराध है। हालांकि अमेरिका के न्याय विभाग ने पेलोसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पहली बार अमेरिका में 5 दवा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। इन पर डॉक्टरों को दर्द निवारक दवाएं लिखने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। इन दवाओं में प्रतिबंधित तत्व होते हैं जो लोगों को उनका आदी बना देते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश के शीर्ष सैन्य प्रमुखों के साथ एकता का प्रदर्शन किया है। उनके रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने वेनेजुएला के लिए अमेरिका के विशेष दूत के उन दावों को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला के शीर्ष सैन्य अधिकारी मादुरो को गद्दी से हटाने के लिए विपक्ष से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वेनेजुएला का संकट जल्द खत्म हो जाए। अमरीका के नेशनल डे ऑफ प्रेयर के मौके पर व्हाइट हाउस सर्विस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
I'd like to begin by sending our prayers to the people of Venezuela. In their righteous struggle for freedom.
मैं वेनेजुएला के लोगों के लिए प्रार्थना करने से शुरुआत करूंगा जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वेनेजुएला के लोगों पर हो रहा अत्याचार जल्द ही खत्म होना चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है, और ये देश कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था। इसलिए हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं। हम उनकी मदद के लिए मौजूद हैं और रहेंगे। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की लेबर पार्टी लगातार रक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त किए गए गेविन विलियमसन के खिलाफ पुलिस जांच की मांग कर रही है। वहीं कैबिनेट ऑफिस के मंत्री डेविड लिडिंगटन ने संसद से कहा है कि सरकार का मानना है कि मामला खत्म हो चुका है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कल पूर्व रक्षा मंत्री विलियमसन को बर्खास्त कर दिया था। उन पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी लीक करने के मामले में हुई है। वहीं कंजर्वेटिव सांसद सर डेंजमंड स्वेन का कहना है कि आरोपों से इनकार करने वाले विलियमसन को खुद को कसूर साबित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए।
The Prime Minister is entirely entitled to sack a minister the moment they lose.
प्रधानमंत्री को पूरा हक है कि किसी मंत्री में विश्वास खो देने के बाद वो उसे हटा सकती हैं। लेकिन अब एक आदमी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उसकी छवि सार्वजनिक तौर पर तार तार हो गई है, और वो कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक न्याय का मामला है और इसमें जुड़े सबूतों को गौर से देखना चाहिए। ये थे कंजर्वेटिव सांसद सर डेंजमंड स्वेन के शब्द। सूडान की राजधानी खार्तूम में कई प्रदर्शनकारी एक बार फिर सैन्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि सेना सत्ता का नियंत्रण नागरिक सरकार को दे दे। विपक्ष की भी मांग है कि प्रस्तावित अंतरिम परिषद में ज़्यादातर सिविलियन हो। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। कुदरत आज एक बार फिर इंसानी जज्बे का इम्तिहान लेने को तैयार है। चक्रवाती तूफान फोनी ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान सुबह 8 से 10 बजे के बीच तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के टकराने के समय 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दो दशक पहले यानी साल 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद से इसे सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। नौसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। पूरी रिपोर्ट सुनिए संदीप साहू से।
मौसम विभाग से मिली ताजा सूचना के अनुसार चक्रवाती तूफान फोनी आज सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पुरी या इसके आसपास किसी इलाके में जमीन पर प्रवेश करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थल प्रवेश के समय हवा की गति 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसके कारण कच्चे घरों, बिजली और टेलीफोन लाइनों को भारी क्षति की आशंका की जा रही है। संभाव्य स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में जानमाल की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की 28 टीमें और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स यानी ओड्राफ की 20 टीमों को संभाव्य प्रभावित स्थानों पर तैनात कर दिए गए हैं। इन इलाकों में खाद्यान्न, पीने का पानी और दवाइयां आदि तैयार रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर आकाश मार्ग से खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। राज्य के विशेष राहत आयुक्त डॉक्टर विष्णुपद सेठी ने कल शाम पत्रकारों को बताया, हमने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी है। जिलाधीशों ने करीब 11.5 लाख लोगों को स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा है। एक घंटे पहले मिली सूचना के अनुसार 4.5 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है, लेकिन कई स्थानों से खबरें आ रही हैं कि समुद्री तट पर रहने वालों को साइक्लोन शेल्टरों में जाने के लिए राजी करना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। खासकर मछुआरे अपने नाव छोड़कर कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जमीन में प्रवेश के बाद फोनी तटीय उड़ीसा के खुर्दा, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता जाएगा इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। कल शाम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, तूफान फोनी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने और उन्हें खाद्यान्न आदि मुहैया कराने के इंतजाम किए गए हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रखें। एहतियात के तौर पर भद्रक और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली करीब 150 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कल मध्यरात्रि से अगले 24 घंटों तक भुवनेश्वर हवाई अड्डे से सभी विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। पूरी शहर से सभी पर्यटकों को कल शाम से पहले ही बाहर भेज दिया गया था। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साल भर भक्तों की भारी भीड़ बनी रहती है। तूफान फोनी को देखते हुए बाहर से आए लोगों को शहर छोड़कर जाने को कहा गया। इस तूफान को लेकर उनका क्या कहना था, ये सुनिए।
हम लोगों को जो है होटल में कहा गया कि लेटर दिखाए कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, भगवान की कृपा रहे तो।
तूफान के कारण तो हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। मेरा नाम मधुसूदन सिंघारी है, मैं जगन्नाथ जी की पूजक हूँ। इस तो देखिए काल से हम देख रहा हूँ नील चक्र के ऊपर एक चील बस रहा उड़ रहा है, और काल से मंदिर ऊपर है, तो इसीलिए हम लोग पुरी में और जो सभा लोग जानते हैं कि कुछ विपद आया है, हाँ पुरी में हिट रहे, तो इसलिए हम लोग सब बहुत चिंतित हूँ और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूँ जैसे कोई किसी का खेती ना हो और अच्छी तरह उसको हो जाए।
देखिए मेरा नाम सोमनाथ है, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। पुरी में ना तो कुछ होता है ना कुछ होने वाला है, पुरी वो एक स्थान है जगन्नाथ धाम में, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। इसके पहले प्रशासन ने जो तत्पर दिखा रहे हैं, जो भयभीत लोगों को करा रहा है, वो केवल उनकी व्यवस्था के लिए, नहीं तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि जब भी कोई बाज वगैरह मंदिर में उड़ते हैं तो कुछ मुसीबत आता है, तो ये मुसीबत को खंडन करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, यहाँ ना कुछ होगा ना कुछ होने वाला है।
मौसम विभाग के मुताबिक फोनी का प्रभाव पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा फिक्र ओडिशा को लेकर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप आए bbchindi.com पर। अगली खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली के कुरखेड़ा इलाके में दो दिन पहले संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवानों समेत कुल 16 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी कल प्रभावित इलाके में पहुंचे, हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने उनसे बात की।
कुल मिलाकर के 16 लोग मारे गए थे, जिसमें 15 सुरक्षा बल के जवान थे, एक सिविलियन ड्राइवर, और इनको सलामी दी गई बाकायदा। गढ़चिरौली जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, मुख्यमंत्री आए और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर आए, पुलिस महानिदेशक भी पहुंचे, और शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये माना पहली बार कि पुलिस से चूक हो गई है। और दरअसल यही होता है कि जब भी इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं वो उसका कारण ही चूक होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके हिसाब से जिन इलाकों में बारूदी सुरंगों का खतरा होता है वहां पर वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और जब आग लगाई गई सुबह में 3 दर्जन वाहनों पर, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो सड़क निर्माण के काम में लगी हुई थी उनके वाहनों में जब आग लगाई गई और लगभग 50 से ज्यादा वहां पे बैनर टांगे गए और मारपीट की गई ठेकेदार के जो मुंशी हैं उनके साथ, और मजदूरों को एक तरफ करके रखा गया और एक एक करके आग लगाई गई, और वैसी सूरत में पुलिस बल का ऐसे अचानक एट रैंडम चला जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक था। और जैसा कि स्थानीय लोग वहां बता रहे थे मुझे, जहां पर ये वाहनों को जलाया गया है, कि लगभग संख्या माओवादी छापामारों की 500 के आसपास थी, यानी कि इतना पुलिस का महकमा गढ़चिरौली में मौजूद भी नहीं होगा जितनी संख्या में नक्सली वहां पर वारदात को अंजाम देने आए थे।
क्या जो वो सड़क बनाने की प्रक्रिया थी और जो वाहन जलाए गए, क्या फिर वो शुरू हो पाया नहीं हो पाया?
अभी तो घटना ही घटी है, अभी तो दहशत का माहौल है, चारों तरफ बंद था, चूंकि एक तो जितने भी ये जवान इसमें मारे गए घटना में सब आसपास के इलाकों के ही थे, और इस वजह से बाजार, दुकानें सब बंद रही, बिल्कुल एक बंद का माहौल था। तो टोपोग्राफी, जंगलों और पहाड़ों की जो टोपोग्राफी है, ये बड़ा कठिन, एक डिफिकल्ट टेरेन है, जहां पर भाषा की प्रॉब्लम है, जहां पर आवाजाही का कोई साधन नहीं है, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2-2 दिन लगते हैं, तो इस वजह से यहां पर बड़ी कठिनाइयों में काम करना पड़ता है सुरक्षा बल के जवानों को भी, और यही वजह है कि उन्हें सबसे ज्यादा कैजुअल्टी का सामना करना पड़ता है। और खास तौर से जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखा गया है, IED जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी, ये सबसे खतरनाक साबित हो रहा है सुरक्षा बलों के जवानों के लिए। 60 जो जिसके जवान ये मारे गए हैं, ये फोर्स ही बनाई गई थी नक्सल विरोधी अभियान के लिए, लेकिन अभी तक ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। यहां तो एंटी लैंड माइन व्हीकल जो है वो तक उड़ा दिए जा रहे हैं, इतने जबरदस्त धमाके हो रहे हैं इस इलाके में।
प्रशासन ने अब क्या कहा है कि वो किस तरीके के कदम उठाएगा?
प्रशासन ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और कार्रवाई करेंगे, सख्ती से निपटेंगे, लेकिन ये जब भी कोई बड़ा कांड होता है वो इसी तरह का जुमला, इसी तरह की बात प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो एक जो लल पीरियड होता है जिसमें माओवादी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का जिसको वक्त कहते हैं कि वो खामोश बैठ जाते हैं बिल्कुल।
ये थे सलमान रावी और उनसे बात कर रहे थे मोहम्मद शाहिद। आगे बढ़ते हैं। अब से करीब 2 साल पहले झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले के 11 अभियुक्त हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के साथ नजर आए थे और इसे लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया था। बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने जयंत सिन्हा के साथ खास बातचीत में इस मुद्दे को लेकर सवाल किए और सबसे पहले पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं।
ये आपने बिल्कुल स्पूरियस कोरिलेशन जिसको कहते हैं ना स्टेटिस्टिक्स में, वो आपने बिल्कुल स्पूरियस यानी एकदम फर्जी कोरिलेशन, फर्जी एक आपने रिश्ता बनाया है। पूरे देश में गौ हत्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं था, कोई रोक नहीं था। जब हमारी सरकार आई और हम लोगों ने ना सिर्फ इस क्षेत्र में लेकिन और कई और क्षेत्रों में हमने कानूनी कार्रवाई इन सब अवैध कामों पे किया, तो ये सब बातें फिर पारदर्शी तरीके से इनको हमने उजागर किया।
मैं लिंचिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप गौ हत्या की बात कर रहे हैं, लिंचिंग के नंबर्स बढ़े हैं आपके दौरान, मतलब ये फैक्ट चेकर तो पब्लिक सोर्स है, कोई मेरी निजी सोर्स तो है नहीं, लेकिन इसमें ये ग्राफ दिखा था जिसको आपने स्पूरियस कहा, तो आई टेक एक्सेप्शन।
मैंने गौ हत्या की बात की, मैंने लिंचिंग की बात नहीं की थी।
तो मैं पूछ रहा था कि लिंचिंग क्यों इतनी ज़्यादा इस 2014 के को लेकर इतनी क्यों बढ़ी है?
जहाँ तक लिंचिंग का मामला है वो मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, गौ हत्या का मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं गौ हत्या के बारे में आंकड़ों के आधार पर आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर लिंचिंग की आप बात उठाएं तो मैं दो तीन बातें उस पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। पहली बात तो ये है कि लिंचिंग जो है वो बिल्कुल हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, गैर कानूनी काम है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में लें, ये बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई कानून अपने हाथ में ले ले और इस प्रकार के बड़े दुखद कांड हों, घटनाएं हों, तो जो हमारी सरकार है वो पूरी सख्ती से कानूनी कार्रवाई उस पर बिल्कुल करेगी। और तीसरी बात, जब मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं, कानून जो है हमारे लोकतंत्र में सर्वोपरि है।
आप ही की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो मरियम खातून की एक केस के ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है, हाल ही में उनका बयान था दैट आई थॉट नथिंग कुड बी वर्स देन माय हस्बैंड डाइंग लाइक दैट बट देन यू ग्रीट द मर्डरर्स लाइक दे हैव डन समथिंग ब्रेव and achieved a feat and garland them. I could not imagine that a minister could do something as horrible as that. क्यों कहीं ना कहीं विक्टिम के साथ आपकी कोई तस्वीर नहीं दिखी गई, या फिर आप उनको गार्लैंड करते हुए नहीं दिखे गए, या उनको एक तरह से सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे गए?
ये जो हुआ बहुत दुखद बात हुई और मुझे बहुत सहानुभूति है मरियम खुतून जी से, और जो उनको और अलीमुद्दीन अंसारी जी को जो उन पे हुआ वो बहुत दुखद बात है। लेकिन जो मेरे घर में लोग आए, और वो कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, बिल्कुल प्राइवेट इवेंट था, जो लोग मेरे घर आए और इसी कक्ष में थे, इसी सभागार में थे, वो निर्दोष हैं। और ये जो आपने अजम्पशन बना लिया कि वो थे और दोषी हैं, वो आपका अजम्पशन ही गलत है। आपका आप बीच में मत बोलिए, मैं आप जब 10 मिनट बोले मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप प्रश्न पूछ लीजिए भले मैं इसका जवाब दूं, लेकिन आप ये अजम्पशन कर रहे हैं। और मीडिया में बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, क्योंकि उनका कोई आइडियोलॉजिकल बायस है या किसी विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, तो उनका पहला ही अजम्पशन होता है कि वो दोषी हैं। अगर कोई भी इस केस का अध्ययन करे, सोचे, विचार करे, हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर पढ़े, स्पष्ट नज़र आएगा कि जो लोग मेरे घर आए वो निर्दोष है। और जब मैं संपूर्ण न्याय की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो विक्टिम थे और उनके परिवार हैं उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन जो निर्दोष थे और जिनको गलत सजा देकर जिनको जेल डाला गया, एक साल बेचारे जेल में भी थे, उनके साथ भी न्याय हो। और वो इतने गरीब बेचारे व्यक्ति थे कि उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपना केस को जो सही तरीके से अदालत में उसे सामने प्रस्तुत कर पाएं। पार्टी के लोग और कुछ लोग उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग, उन लोगों ने उनको सहयोग किया, और सहयोग करके जब बेल की हियरिंग अदालत में आई तो अदालत में हाईकोर्ट ने कह दिया अपने बेल ऑर्डर में कि इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। वो रिलीज हुए, हमारे घर आए, और एकदम प्राइवेट कार्यक्रम था, कोई मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। उस प्राइवेट कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग मेरे पैर पे पड़ गए, ये मेरे पैर पे पड़ गए, और उनके माँ बाप ने कहा कि देखिए आपने उनको एक नया जीवन दे दिया है, आप इनके जन्मदाता हैं, इनको ज़रा आप इनका अभिनंदन कर लें। वो मैंने अभिनंदन किया, प्राइवेट इवेंट था, कोई नहीं था, 10 मिनट भी नहीं होगा ये इवेंट, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसको फेसबुक पे डाल दिया और फेसबुक पे फिर मीडिया ने उठा लिया।
दे आर स्टिल अक्यूज्ड, दे आर नॉट अक्विटेड राइट नाउ, अभी भी वो अक्विट नहीं हुए हैं। तो पहली बात कि क्या अक्विटल तक वेट करना एक प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ लॉ नहीं होता, और दूसरी बात ये कि आपने उनकी कोई लीगल असिस्टेंस की थी उस केस को लड़ने के लिए?
जुगल जी, हमारे सिस्टम में कितने सारे अक्यूज्ड हैं, विपक्ष के अगर आप देखें बड़े से बड़े नेता आज के समय अक्यूज्ड हैं और बेल पे हैं, उनको माला नहीं पहनाई जाती, पूरा देश उनको माला पहना रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप।
ये थे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, और उनसे बात कर रहे थे जुगल पुरोहित। देश में जारी आम चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार की गर्मी बढ़ गई है। गुरुवार यानी कल की चुनावी हलचल पर सुनिए भूमिका राय की रिपोर्ट।
पांचवें चरण के चुनाव से पहले नेताओं का प्रचार जोरों पर है। जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल किए जाने के बाद रैलियों में ये मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में इसको मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते नजर आए। जयपुर में एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये जारी रहे इसके लिए देश के अंदर मोदी सरकार का दोबारा आना बेहद जरूरी है।
उसी उल्टी गिनती शुरू को करने के लिए और ये दिन बहुत जल्दी देखने को मिले कि जितने भी आतंकवादी हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, इन सब की उल्टी गिनती प्रारंभ की जा सके, इसके लिए आवश्यक है देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार।
चुनावी रैलियों में बीजेपी नेताओं द्वारा सेना और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करने को कांग्रेस पार्टी ने गलत बताया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन उनकी तब की सरकार ने इसका कभी भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया।
न वाजपेयी जी ने कभी इनका जिक्र किया और न कभी मनमोहन सिंह जी ने इनका जिक्र किया, क्योंकि ये सेना का काम है, सेना का हम सम्मान करते, सेना ये काम करती, इन चीजों को कभी जो है पब्लिक नॉलेज में जनता के बीच में इसकी घोषणा और ये सब नहीं किया जाता। ये परंपराएं हैं, इस सरकार ने सारी परंपराएं तोड़ दी हैं।
इसके जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करवाया। आप जितने बार भी झूठ बोले, कांग्रेस पार्टी जितने बार झूठ बोले, वो सच नहीं हो सकता है। झूठ के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी के बाद माफी मांग रहे हैं।
कल राहुल गांधी ने सीकर, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने रायबरेली में भी चुनावी रैलियां की। राहुल गांधी ने अपनी रैली में गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने की न्याय योजना का गुणगान किया और प्रधानमंत्री मोदी को उद्योगपति अनिल अंबानी का चौकीदार बताया। वहीं सोनिया गांधी ने रायबरेली की अपनी रैली में कहा कि मोदी सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं।
नौजवान नौकरी की तलाश में अभी तक लगे हैं। किसानों को अब पता चला कि दो गुना आमदनी सिर्फ जुमला था। इसी तरह हमारी प्यारी बहनों को अपना परिवार चलाना पहले से इतना मुश्किल हो गया है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल राजगढ़, नीमच और सीहोर में चुनावी रैलियां की। एक रैली में उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दो जगह पर लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, एक पाकिस्तान में और दूसरा राहुल गांधी के कार्यालय में।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। और अब आज के अखबारों की बात गुरप्रीत सैनी के साथ।
जी, चक्रवाती तूफान फोनी ओडिशा के तट से टकराने वाला है, ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है कि जो मौसम विभाग है उसने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसी भी जान का नुकसान ना हो। इसके अलावा द हिंदू अखबार अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी खबर, सबसे ऊपर ये खबर दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो उनका हेट स्पीच से जुड़ा मामला है, जो उन्होंने जितने भी ऐसे मामले हैं उन पर 6 मई तक फैसला सुनाए,
यानी जो उनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं
जी
चुनाव आयोग को।
जी, और कांग्रेस ने गुरुवार को कहा है कि यूपीए के शासनकाल के दौरान कुल 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसकी लिस्ट और इसकी डिटेल उन्होंने जारी की है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में दिख रही है। और इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों में दिख रही है कि लड़कियों ने लड़कों से आगे निकलकर सीबीएसई में 12th क्लास में टॉप,
12वीं कक्षा की जो परीक्षा के नतीजे कल आए हैं उसमें लड़कियां एक बार फिर आगे रही हैं।
जी, और एक और खबर जो सभी अखबारों में मुझे दिख रही है वो है केरल के मुस्लिम कॉलेजों में बुर्का पर प्रतिबंध। ये खबर, केरल के प्रभावशाली मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने गुरुवार को बुर्का पर बैन लगा दिया है और MEC जो ये संस्था है, ये जो समूह है, इसके तहत 150 संस्थाएं आती हैं और इन्होंने कहा है कि जो भी लड़कियां इन संस्थाओं में आती हैं पढ़ने के लिए उन्हें ऐसे कपड़े पहनने की मनाही होगी जिससे कि उनका चेहरा ढक जाता है।
जी, बहुत शुक्रिया गुरप्रीत अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने देश के अटॉर्नी जनरल विलियम बार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बार एक दिन पहले ही सीनेट की न्यायिक समिति के सामने पेश हुए थे। और उन्होंने साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित दखल की जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट को लेकर अपना पक्ष रखा था। न्याय विभाग ने पेलोसी के आरोपों को बेतुका बताया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
साल 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के मामले की दो साल से जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने हाल में 448 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने चार पन्ने का सार तैयार किया, उसे कांग्रेस के सामने रखा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन चिट दे दी। लेकिन मुलर ने विलियम बार को खत लिखकर दो बार अपील की थी कि वो रिपोर्ट के निष्कर्षों की और जानकारी दें। मुलर का खत सार्वजनिक होने के बाद सीनेट की न्यायिक समिति ने अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने के लिए कहा। विलियम न्यायिक समिति के सामने पेश हुए, लेकिन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि वो मुलर रिपोर्ट के बारे में सच बोलने में नाकाम रहे। नैन्सी ने कहा कि झूठ बोलकर विलियम बार ने अपराध किया है।
How sad it is for us to see the top law enforcement officer in our country.
ये कितने दुख की बात है कि हमारे देश के कानून के सबसे बड़े अधिकारी ने अमेरिका की कांग्रेस के सामने सच को गलत तरीके से पेश किया और उसे छुपाया। ये देखने के बाद मैं यही कह रही थी कि आखिर अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका के संविधान और कांग्रेस के जानने के अधिकार का अनादर क्यों किया। ये थे प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शब्द। हालांकि न्याय विभाग ने पेलोसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। समिति के चेयरमैन और रिपब्लिकन लिंडसी ग्रैम ने पत्रकारों से कहा कि पेलोसी टिप्पणी करते वक्त हद पार कर गईं।
This an offensive statement. I think she should apologize to the attorney general or be specific as to how he lied.
ये एक अपमानजनक बयान है और मुझे लगता है कि उन्हें अटॉर्नी जनरल से माफी मांगनी चाहिए या पेलोसी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे झूठ बोला। मैंने अटॉर्नी जनरल का बयान सुना है, मैंने भी उनसे सवाल पूछा था और मुझे लगता है कि उन्होंने मुलर से खत के बारे में बातचीत को लेकर जो बयान दिया, मुझे उस पर भरोसा है। ये थे समिति के चेयरमैन लिंडसी ग्रैम के शब्द। डेमोक्रेट सीनेटर अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल विलियम बार का कहना है कि उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा है कि ट्रंप ने अवैध तरीके से जांच में बाधा डालने की कोशिश नहीं की।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। इन दिनों खेले जा रहे आईपीएल 12 के मुकाबलों में कब कोई नीरस सा लगने वाला मैच रोमांच की हदों को पार कर जाए कहना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही कल हुआ जब मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थे। जीत के लिए 163 रनों के लक्ष्य की तलाश में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने एक समय अपने 5 विकेट 14.3 ओवर में केवल 105 रन पर खो दिए थे, लेकिन इसके बाद मनीष पांडे और मोहम्मद नबी का बल्ला ऐसा बोला कि निर्धारित 20 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर भी 6 विकेट खोकर 162 रन था। मनीष पांडे ने 47 गेंदों पर नाबाद 71 और मोहम्मद नबी ने 20 गेंदों पर 31 रन बनाए। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक के नाबाद 69 रनों के मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन ही बनाए थे। दोनों टीमों के 162 रन बनाने के बाद मैच टाई हो गया और नतीजे के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया गया। सुपर ओवर में हैदराबाद 8 रन ही बना सकी और जीतने के लिए 9 रनों का लक्ष्य मुंबई ने हार्दिक पांड्या के छक्के की मदद से बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इस रोमांचक जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस भी 13 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ अंतिम 4 यानी प्लेऑफ में पहुंच गई। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। आज आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
और चलते चलते मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान फोनी अब से कुछ घंटों बाद ओडिशा के पूरी तट से टकराएगा। तूफान के असर से बारिश शुरू हो गई है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने देश के अटॉर्नी जनरल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने मुलर रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस से झूठ बोला, जो कि अपराध है। पहली बार अमेरिका में 5 दवा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। इन पर डॉक्टरों को दर्द निवारक दवाएं लिखने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माद्रो ने देश के शीर्ष सैन्य प्रमुखों के साथ एकता का प्रदर्शन किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।